खुद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 29 जमादिल अव्वल 1443 हिजरी जनवरी की 3 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारी बातें आपकी पसंद का म्यूजिक और आप लोग के मैसेजेस देकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, इस नए साल का आगाज भी वीकेंड के साथ आपका बहुत अच्छा हो गया होगा एंड ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट शो ऑफ द ईयर एंड आई रियली होप कि हमारा और आपका साथ जो है वो इस साल भी 2022 में भी पिछले सालों की तरह जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलता रहे। बहरहाल जी वी आर ऑफ टू अ न्यू ईयर नाउ and the show is also started and you guys were enjoying this very nice song and program mein agar aapko jo hai wo participate karna hai to phir tareeka kar saal mein pehli baar tareeka kar aapko bata dete hain ji apne mobile ke nahi aapko jo hai na basically tweet karna hai aur tweet karte hue aapko hashtag use karna hai sunrise with adil all right zabardast ji that is great aur messages aap logon ke mere paas yahan par maujood hain और आज सुबह का बल्कि आज वाह क्या बात है आज न्यू ईयर का पहला मैसेज मैं यही सोच रहा था कि सबसे पहला मैसेज किसकी तरफ से आया हुआ होगा। चलें जी हमारे दोस्त साहब जो है नजम साहब ने जो है वो आज का पहला ट्वीट जो है वो हमें भेजा है और माशाल्लाह काफ़ी भड़कता हुआ जिफ जो है वो आपने भेजा है 2022 हैप्पी न्यू ईयर करके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई सुबह बखैर आपको और तमाम लिसनर फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि नए साल का आगाज है रेडियो चैनल का नाम तब्दील हो चुका है और शो का नाम भी तब्दील होकर आपके साथ जुड़ गया है। वैसे वाकई थिंग्स रियली चेंज आई मीन हु वुड हैव थॉट। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल पूरा अभी तो थ्रेड है अगला मैसेज भी है इनका ट्वीट भी है दूसरा साथ। इसी तरह मैंने भी अपना ट्विटर हैंडल जो उर्फ़ आम में नजम के नाम से बना हुआ था उसको अपने असल नाम जवेद से तब्दील कर रहा हूँ। आज नए साल के पहले शो के आगाज से मुझे नजम के बजाय जवेद लिखा जाए और पुकारा जाए। उम्मीद है कि आपको मेरा नाम याद करने के लिए सामने चिट नहीं लगाना पड़ेगी। वैसे जवेद साहब तो वैसे काफी मुनफरिद नाम है आज का, बोलो आपको शायद कभी जवेद कह के ना पुकारने की जो वजह है ना वो यही है कि ये आज तक नाम किसी का सुना ही नहीं है मैंने। तो नजम एक मेरे ख्याल से नजम आपका गालबन तखल्लुस था तो उस पर आप शायरी करते होंगे तो आपका नाम जाहिर है नजम साहब ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन चलें जी तो आज से नजम साहब ने कहा है कि मुझे जवेद कहकर जो है वो पुकारा जाए और मेरा नाम यही लिया जाए और ठीक है चलें सर फिर आप इवनिंग स्पेशल में एक इश्तेहार भी लगा दें इस हवाले से बट ठीक है सर नया साल नया नाम क्या बात है। बशीर अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग अदील भाई एक बात तो बताएं सेहत इंसाफ कार्ड को पजीराई क्यों नहीं मिल रही हालांकि ये कामयाब रहा केपी में। सेहत इंसाफ कार्ड को पजीराई क्यों नहीं मिल रही मेरा तो ये ख्याल है कि सेहत इंसाफ कार्ड को काफ़ी पजीराई मिल रही है और जो लोग इसके बेनिफिशरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं अक्सर गवर्नमेंट के। मैंने अपना एक बार एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जहाँ पर एक साहब ने जो है वो अपनी कैंसर में मुब्तला वालदा की जो है वो मुझे रुदात सुनाई थी एंड हाउ दिस सेहत इंसाफ कार्ड हैड सेव्ड द मिलियंस ऑफ रुपीज़ जिस पे काफ़ी मेरी खिंचाई भी हुई थी NTPTI लोगों की तरफ से। लेकिन हाँ देखिए इससे एक लर्निंग ज़रूर हुई है कि जो आप बेसिकली कहना यही चाह रहे हैं ना कि PTI की जो जो शामत आई है इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस उसके हवाले से मैं खासा आप लिंक करना चाह रहे हैं तो फिर आई थिंक गवर्नमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जितनी भी अच्छी वेलफेयर की स्कीम ले आएँ एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन इज द डेडलीस्ट ऑफ द डेडलीस्ट यानी अफराते ज़र जो है वो सबसे ख़तरनाक सियासी मुद्दा होता है और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो तवातुर के साथ हुकूमतें हैं वो अपने आखिर के 1-1.5 साल में दबा के सब्सिडियाँ देती हैं आने वाली हुकूमतों के लिए एक तूफान एक अजाब छोड़ के चली जाती हैं और उसकी वजह यही होती है कि उनको इन्फ्लेशन जो है वो डाउन रखनी होती है। सो आई थिंक सेहत इंसाफ कार्ड एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और मैं PTI का वोटर ना होते हुए भी इसको बहुत इसका अप्रिशिएटिव हूँ। अगर मैं खुद लोगों से मैंने बात नहीं की हुई होती तो फिर बात अलग होती। अब तो आपको पता है कि इसका दायरा कार पंजाब में भी फैला दिया गया है और हम सिंध के लोग जो हैं बस ऐसे ही हंसते खेलते जो है वो उसको देखते रहेंगे और हम तालियां बजाते रहेंगे और ट्वीट्स करते रहेंगे सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं जी और क्या खबर है जी यूसुफ नवाब साहब माशाल्लाह इस वक्त हमारे दोस्त वाह इस वक्त मौजूद है नथिया गली में क्या बात है कह रहे हैं अदील भाई, बहुत शदीद सर्दी है, -1 डिग्री सेल्सियस यार, और यहाँ पे मंडे को बारिश. और आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने पिछले हफ्ते एक्सपीरियंस की थी जिससे कराची में मंडे को काफी बारिश हुई थी और बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई थी, पहाड़ों पे बर्फबारी वगैरह भी हुई थी. और अब एक नया सिलसिला जो है वो बारिशों का, बर्फबारी, झालाबारी, वट एवर इज योर फेवरेट, तकरीबन 95% पाकिस्तान को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये कवर कर रही होंगी. तो एक बार फिर से और ये बैक टू बैक दो सिस्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं, एक अभी आज से शुरू हो जाएगा और एक इस इख्तिताम हफ्ता पे जो है वो टच कर रहा होगा. सो इंशाल्लाह वील बी गेटिंग अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ विंटर रेन्स एंड वील बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्नोफॉल्स इन आर माउंटेन्स इंशाल्लाह, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए बहुत जरूरी है. सो ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मुझे नहीं पता यूसुफ नवाब साहब नथिया गली में कब तक रुके हुए हैं, लेकिन अगर एक दिन और रुक जाएं तो फिर ही कैन एक्सपीरियंस सम स्नोफॉल देयर एज वेल. बट वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान के ज़्यादातर जो क़याम गाहें होती हैं, देखिए मैं उनको होटल्स नहीं कह रहा, मैं होटल्स तो ज़रा थोड़ा अच्छे अच्छे एक होटल का सोचते होंगे ना, पहाड़ी इलाके में होटल्स एक हमारे ख्याल में आता होगा कि बहुत ही नहीं भाई, अच्छे कमरे हमारे सब कुछ बन गए, लेकिन इन कमरों की जो एकिलीज हील्स होती है ना वो गर्म होता है, गर्म पानी आना वॉशरूम में, एक तो वो ही जो शेर लाने के मुतरादिफ होता है, और वो एक थक्कड़ सा आपको जो है ना वो एक हीटर पकड़ा देते हैं, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी गैस में चलता है जिससे गर्मी नहीं निकलती है, ठंडी आग निकल रही होती है उससे, ऐसा फील होता है आपको. सो बहरहाल आई होप जहाँ भी आप रुके हुए हो मेरे भाई यूसुफ, आपको वहाँ पे उन्होंने गर्मी का अरेंजमेंट जो है ना जरा थोड़ा सा हीटर शीटर और ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट ठीक होगा. आसमा आवान कोटली आज़ाद कश्मीर से कहती है, भाई गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, क्रिकेट के हवाले से अच्छा साल होगा इंशाल्लाह. क्रिकेट के हवाले से अच्छा साल भी होना है और बहुत क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी है, आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर इसके हवाले से बात करेंगे. लेकिन आज सुबह सुबह मैं अभी अभी ये ट्वीट देख रहा था एंड दिस ट्वीट डजंट लुक गुड, एनसीओसी का ट्वीट है और पाकिस्तान में बिलाखिर जो कोविड का पॉजिटिविटी रेशियो है वो 1% से ऊपर, बल्कि आज तो वो 1.5% से ऊपर था. दैट मीन्स दी अब अपने कदम मुकम्मल तौर से ओमिक्रॉन जो कि पूरी दुनिया में जमा चुका है, पाकिस्तान में भी जमाना शुरू कर दिया, और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो अपने कोरोना की जो से भी जॉन सी भी उनकी वेव है उसका उस वक्त आगाज हो गया. पाकिस्तान में इट्स गोइंग टू बी द 5th वेव. हाउएवर एज आई हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, अब तक ओमिक्रॉन की जहाँ पे भी वेव्स आ रही हैं उस पे हस्पतालों में वो जिस लेवल का, क्योंकि देखें अगर आप कंपेयर करेंगे जितने लाखों में अमेरिका में एक दिन में 4-4 लाख 5-5.5 मिलियन केसेस अ डे की बातें हो रही हैं, बरतानिया में 1.5-1.5 लाख केसेस की बातें हो रही हैं, उसके मुताबिक अगर यही खुदा ना खासा डेल्टा वेरिएंट होता तो इस वक्त तो तबाही फिर चुकी होती, लेकिन अभी तक वो आपने अस्पतालों में रश नहीं देखे हैं. दुनिया भर का जो एक्सपीरियंस हमें बता रहा है वो यही है कि जी अभी इतना बैड सीन जो है ना वो है नहीं. और यही एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका जहाँ पे सबसे पहले इसको जो है वो देखा गया था इस पर्टिकुलर वेरिएंट को, अब अंदाज़ा ये हो रहा है वहाँ पे कि जी साउथ अफ्रीका में उनकी हेल्थ अथॉरिटीज़ का ये कहना है दैट दे हैव पीक्ड आउट नाउ, वो पीक से अपनी नीचे उतर गए हैं. सो दैट्स फाइन. सो बहरहाल जी, लेकिन गाइज एनसीओसी ने ऐलान कर दिया इफ़ यू आर 30+ यू कैन गेट योर बूस्टर शॉट ऑफ योर चॉइस, सो गो गेट द बूस्टर शॉट. अगर आपके पास ऑलरेडी आपको वैक्सीन लगी हुई है और आप 6 महीने जो है उसको गुजर चुके हैं, सो गेट योर बूस्टर शॉट एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ. यार आई थिंक मास्क वास फिर से पहनने शुरू करने पड़ेंगे. फैजल अली खान साहब डियर दिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, हैप्पी न्यू ईयर तमाम लिसनर्स को कहते हैं, दैट इज ग्रेट. और हमारे दोस्त वकार अहमद साहब ने जो है वो 2021 के पहली सुबह, जी हाँ 2021 यानी अब से एक साल पहले के दोनों सूरज की तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट. डीजे सुमेर कहते हैं मॉर्निंग एवरीवन एंड स्पेशल शाउट आउट टू आवर स्कूल गोइंग किड्स, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ गुड डे आफ्टर विंटर वेकेशन. हाँ मेरे ख्याल से सिंध में तो विंटर वेकेशन खत्म होने के बाद अब दोबारा से जो है वो स्कूल्स एक बार फिर से खुल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पंजाब में शायद छुट्टियां वगैरह अब शुरू हुई हैं, कुछ ऐसा ही सीन है ना वैसे, क्या ख्याल है. फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग डियर सर, हैव अ वंडरफुल डे, मंथ एंड ईयर 2022 अहेड, सलाम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ द शो, थैंक यू सो मच. एंड देन जीशान बेग साहब कहते हैं दिस इज व्हाट आवर गवर्नमेंट विल गेट, टेलीकॉम टैक्स ऑन एवरी 100. अच्छा आपने जो है ना बेसिकली कैलकुलेशन की है कि पाकिस्तान हैज मोर देन 181 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर, तो आपने 81 को किया है 27 रुपीज से, यानी अगर तमाम के तमाम लोग जो है वो 100 रुपए का लोड करवाएंगे मिनिमम, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी गेटिंग 4.9 बिलियन रुपीज़. कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब सीरियसली. खैर एनीवे 100 रुपए से तो बिल आई थिंक ओवर ज्यादा ही होता होगा, बट सर कुछ भी नहीं है. 4.8 बिलियन रुपीज, तो आटे में नमक दाल भी नहीं गीली होती गवर्नमेंट की इसमें. सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा जी रियाज़ुर रहमान साहब क्या कहते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम, सुनने वालों को नया साल मुबारक. सर आपको भी मुबारक हो. क्या जहाज में मिलने वाला खाना बाहर ले जाने की इजाजत है? ओह आपने एक आर्टिकल शेयर किया, पढ़ लें भाई. इंडिपेंडेंट उर्दू में ये आर्टिकल आया है, और यार इंडिपेंडेंट उर्दू अच्छा है, ये अच्छी वेबसाइट है यार. है थोड़ी सी बाएं बाजू की सोच है, लेकिन फिर भी ठीक है यार, इनके आर्टिकल अच्छे होते हैं और अच्छी तहकीकाती इनमें है ना. यानी बीबीसी उर्दू के मुकाबले की कोई काम हो रहा है यहाँ पे. वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीबीसी उर्दू में कोई बहुत ही शोरा आफाक किस्म का काम होता है, लेकिन फिर भी ठीक है जी. पीर जहीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर. फर्स्ट शो ऑफ द न्यू ईयर, अ लॉट ऑफ विशेस फॉर यू एंड योर फैमिली एंड एफएम रेडियो 107.4. Listening show with Amin Bhai, Gul Mustafa Rashid Engineer. Good morning to you all. And then we have got Hassan Iqbal. Positivity show has been increasing for the past 5 to 6 days. It is 1.55 today. Fifth wave looks inevitable. Fifth wave, देखिए पांचवी वेव आनी है. हमें तैयार रहना है. हमें वो जो हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं ना, ऑफ द न्यू नॉर्मल, दीज वेव्स विल कंटिन्यू कमिंग. रिस्ट्रिक्शंस भी आएंगी, सब कुछ आएंगी. हमें ये देखना है कि हम क्या तैयारी करके बैठे हैं. बाकी अल्लाह पे छोड़ दें जी. तैरुल्ला खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. थैंक यू सर. डॉक्टर फराज सेज अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फर्स्ट शो ऑफ 2022, गुड लक. थैंक यू. तनवीर सिद्दीकी कहती हैं सुबह का आदाब, न्यू ईयर का फर्स्ट प्रोग्राम, खुदा करे अदील का शो और तमाम सामईन खुश रहें और हम भी. आमीन सुम्मा आमीन. तहसीन अमजद कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू ग्रेट फ्रेंड अदील एंड द होल सनराइज फैमिली, होप दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स यू बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड मेमोरीज. थैंक यू. एंड डॉक्टर शैला कहती है गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम. ये लें जी हसनैन साहब का शेर आ गया है भाई, बहुत बड़ा शेर लिखा है यार, वो भी आपने रोमन में लिख के भेजा है. तो अभी मैं जरा इसको जो है ना, मैं इसको पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं पढ़ के बता दूँ. अभी मुझे जो है ना काफी देर हो गई है, अभी कोई ब्रेक देखते रखना है यार. ओए होए यार ये क्या हो गया, अबे लगा दी ना नजर आप लोगों ने ब्रेकों को यार, इतने से ब्रेक, यानी 8 बजे तक तो कोई ब्रेक ही नहीं है. ये अच्छी बात नहीं है. Alright, चलें जी, तो अभी देखते हैं इस पे फिर क्या करना है. Okay, गाना तो चलाएंगे यार, मुझे भी ब्रेक लेना, चाय रखी हुई है मेरी, वो भी पीनी है, ठंडी हो जाएगी मेरी चाय यार. बट गाने सुन रहा था मैं. ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं जरा प्लेलिस्ट देख रहा था, मैंने कहा कौन सा गाना चलाया जाए. ठीक हो गया, चलें, चलाया जा सकता है भाई हसनैन. अच्छा पढ़ते हैं ना. काश ऐसा हो कि अपनी दोस्ती कायम रहे, रोज हम मिलते रहें और तिश्नगी कायम रहे. क्या बात है. लफ्ज खुशबू ही रहें तेरी समात के लिए, मेरी बातों में हमेशा ताजगी कायम रहे. वाह. जान ले मतलब यूं ही तू अन कहे अल्फाज का, मेरी ख्वाहिश है कि तेरी सादगी कायम रहे. वाह 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 भाई, बहुत आला हसनैन छा गया. मैं बड़े डरते हुए पढ़ रहा था ये, लेकिन आपने बहुत आसान शेर जो है ना आपने जो है ना वो भेजा है इस वक्त, और इसलिए मैंने बहुत आसानी से इसको पढ़ लिया. तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, खुश रहिए. उमर शहजाद कहते हैं बांग्लादेश इज पुटिंग अप एन अनरियल फाइट इन न्यूजीलैंड. यार वाकई, यानी सोचे न्यूजीलैंड का कितना फिट साल गुजरा है पिछड़ा, और पहले साल में ही बांग्लादेश, यानी ये कहते हैं ना कि कुछ लगता नजर लग गई इनको ना, कोई अपनी मिर्चों वाली नजर उतारना. बिकॉज देखिए जी सीन क्या हुआ है इस वक्त ना, इनका टेस्ट मैच का जो है मानगुनाई में ये हो रहा है, और इसमें उसमें पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 328 रन बनाए. हमें ऐसा लगा कि यार बहुत है न्यूजीलैंड के लिए, बांग्लादेश के लिए बहुत रन बन गए ये. लेकिन मैन दिस बांग्लादेश टीम इज पुटिंग अप अ ग्रेट फाइट. इस वक्त 303 रन हो चुके हैं बांग्लादेश के, उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, और इस वक्त लिट्टन दोश बैटिंग कर रहे हैं 49 रन पर, और उनका साथ दे रहे हैं कप्तान मोमिनुल हक जिन्होंने 60 रन बनाए. इससे पहले नजमुल हसन शॉन्टो ने जो है वो 64 रन बनाए, और महमूदुल हसन जॉय ने जो है वो 78 रन बनाए. बड़े प्यारे नाम होते हैं इनके यार. तो अभी भी काफ़ी बैटिंग इनके पास, बांग्लादेश के पास हैं, 3-4 प्लेयर्स हैं यार, क्योंकि आपने उनको बैटिंग करते हुए देखा है. अभी हम तो उनको क्लीन स्वीप इनके होम ग्राउंड में कर आए, लेकिन भैया ये न्यूजीलैंड, अच्छा ये न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं खिला रहा है. इनकी बॉलिंग अटैक में टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन, जिनको आपको पता है इस वक्त बड़ा एक हवा फैला के, हवा भर भर के बहुत बड़ा बॉलर बना दिया गया है, नील वैगनर और रचिन रविंद्रा. तो भाई ऑलमोस्ट इनकी फुल स्ट्रेंथ, कम से कम अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें तो ये तो परफेक्ट टीम अपनी खिला रहे हैं. तो इसमें भाई गुड गुड स्टार्ट, शाबाश, वेल डन बांग्लादेश, वी आर काउंटिंग ऑन यू मैच. ऑलराइट ग्रेट. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो हाउ अ पर्सन कैन इवैल्यूएट अ पास्ट ईयर, वाज इट अ सक्सेसफुल और अ फेल्ड वन. यार देखो ये तो आवाज दिल से आएगी फहीम, फहीम भाई गई ये आवाज दिल से आएगी आपके कि पिछला साल कैसा रहा। अब देखा इसका तरीका तो ये है ना कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपने पिछले साल को गोल्स बनाए थे या नहीं बनाए थे। नहीं भाई गोल्स अगर मीट हो गए तो फिर जिस तरह कंपनियों में होता है ना आपका पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, आपकी बैलेंस स्कोर कार्ड, गोल सेटिंग एक्सरसाइज, ये ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स, आप कहते हैं यार मैं ये 8 काम करूंगा पूरे साल में, 8 काम में आपने 2 काम नहीं किए होते फिर दैट इट्स अ फेलियर ईयर। अब जब इंक्रीमेंट का टाइम आएगा तो फिर रोते हुए मत आना मेरे पास, ठीक है, बोनस वोनस नहीं मिलेगा तुम्हें बिकॉज तुम्हारी तो रैंकिंग ही 4 है, तू कंपनी रख रही है तुम्हें, तो फिर खुश हो जाता हूँ इस बात पर। ये वाली कहानी होती है आप या तो, लेकिन मेरे जैसे लोग जो हैं जो इतने ज़्यादा पत्थर पर लकीर बना के गोल्स जो हैं वो नहीं बनाते, तो कामयाब साल या नाकाम साल, आई मीन जस्ट अ फीलिंग दैट यू हैव, आई मीन कि पिछले साल कैसा रहा, वाकई सीरियसली या तो ऑब्जेक्टिव गोल सेटिंग एक्सरसाइज करें, अदरवाइज ऐसी ऐसी रहने दें, ठीक है जी। अदरवाइज जस्ट अ फीलिंग, आपके दिल से आपको जो है ना वो क्या फीलिंग आ रही है, दैट्स इट। शहजाद नियाज साहब को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, गुलशन मेमार कराची से आपने सुबह बखैर भेजा है सर, वेलकम बैक एंड गुड टू हैव यू बैक इन द शो। अता रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम टुडे न्यू ड्यूटी स्टार्टेड, परहैप्स हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन मॉर्निंग योगा। नहीं सर ये क्या किया आपने सर, लाइक क्या कोई जॉब शॉप दोबारा स्टार्ट कर लिया पोस्ट रिटायरमेंट, ये क्या किया है आपने मुझे? ओ मैं समझा पीछे बैकग्राउंड में मुझे आगा खान अस्पताल जो है नजर आ रहा है, तो आप यानी साहबजादी को ड्रॉप करने जा रहे हैं। सर कम डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर योगा सर, स्टार्ट वेकिंग 30 मिनट्स अर्ली मेरे ख्याल से, लेकिन एक्सरसाइज ना छोड़ें सर, ये ना करें। जी मैनाज नवीद कहते हैं गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मोहम्मद वकार साहब कहते हैं ऑलवेज फाइंड अ रीजन टू लाफ, इट मे नॉट ऐड ईयर्स टू योर लाइफ बट विल श्योरली ऐड लाइफ टू योर ईयर्स। क्या बात है, ब्यूटीफुल, सुबह सुबह कैसा ज्ञान आ रहा है यार हमारे लिसनर्स की तरफ से, मजा आ गया। जी गुड मॉर्निंग, और मोहम्मद वकार हमें बहरिया टाउन में सुनते हैं। यार मैं अभी वीकेंड में बहरिया टाउन गया हुआ था यार, सीरियसली मैंने सोचा मैं एक ट्वीट कर दूं, आई एम इन बहरिया टाउन, बट देन आई जस्ट फॉरगॉट इट, लेकिन इट वाज नाइस यार, सर्दी शदीद सर्दी, और वहां तो कुछ ज्यादा ही सर्दी थी। अरे यार इस साल के पहले दिन ही दावत खा के आ गए, सो ग्रेट। हुमायूं कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एहसन अहमद फारूकी, ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फैसलाबाद, ही इज ट्रैवलिंग टू फैसलाबाद फ्रॉम लाहौर, और शो सुन रहे हैं, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव गॉट सलमान, अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय योर शो ऑन द फर्स्ट वेकेशन। ओह सलमान काजी साहब आज छुट्टी का पहला दिन है और शो सुन रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं तमाम लिसनर्स को। एंड इसके अलावा मुनव्वर बाबू ने भेजा है जी एक अच्छा मुझे तो ये लग रहा है ये मीम बना हुआ है, ओके एहसास साइकिल, ठीक हो गया यार, ये बेसिकली कहते हैं गरीब की सेहत का एहसास। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि इस वक्त इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मीमेबल मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यार मैं पता है सीरियसली अभी जो नून लीग की तरफ से इस वक्त फ़िलहाल मीम्स आ रहे हैं यार, सेहत इंसाफ कार्ड का मजाक ना उड़ाएं यार, क्योंकि पता है क्या अब वो बहुत सारे गरीब लोगों की मदद हो रही है उससे यार, ये समझा करें बात, आप अगर प्रिविलेज तबके से हैं और आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं दैट रियली जैसे कहते हैं ना कि जो है वो दैट रियली आई मीन अब कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई, गवर्नमेंट कर रही है, इसको अप्रिशिएट करें यार, लोग कोई वाकई मदद हो रही है इसकी वजह से। शैला कहती हैं पंजाब में नेक्स्ट मंडे से ऑन है फॉर किड्स, यानी पंजाब में अभी छुट्टियां हैं, चले गुड है जी, इंजॉय करें। व्हाट अ डेब्यू फॉर अस्नैन इन बिग बैश, व्हाट अ डेब्यू फॉर अस्नैन इन बिग बैश यार, पहले ओवर में 3 विकेट ले ली। अरे भाई अब तो हमने किसी के बारे में बोलना ही छोड़ दिया, हम कहते थे बिग बैश में ये हारिस रऊफ भाई ये नहीं है, नहीं चलेगा, चल गया वो आके अपने 5वें साल में, इसलिए अस्नैन को कुछ नहीं बोल रहा। अब अल्लाह करे, अल्लाह तुझे बहुत कामयाबियां दे, बस हमारी दुआएं ये हैं हसनैन के लिए यार, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, हैदराबाद का नाम रोशन करो, शाबाश। फरहान रजा कहते हैं ब्रो जैसे रिपीट ऑर्डर नहीं होता, जैसे रिपीट ऑर्डर नहीं होता, मेरा सवाल भी फहीम भाई वाला टू यू, यानी आप भी ये जानना चाह रहे हैं कि हाउ टू डिटरमिन अ गुड ईयर और बैड। मेरे ख्याल से तो यार मैंने आई थॉट आई ट्राइड टू आंसर दैट, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आंसर से जो है ना वो तशफी हुई नहीं, तभी किसी ने मुझसे एक बार फिर से यही सवाल पूछ लिया हमारे फरहान रजा साहब ने, न्यू ईयर के अपना साल कैसे डिटरमिन करें कि अच्छा था या बुरा था। यार मैं तो यही कहूँगा यार, आई मीन यू सेट सर्टेन गोल्स, कुछ गोल्स सेट कर लें, अगर लगता है कि वो गोल्स मीट हो गए तो वेरी गुड एक्सेलेंट, गोल्स मीट नहीं हुए नहीं यार, बट देखो यार मैं पता है क्या समझता हूँ, अब मैं आपको ज़रा फलसफियाना मंतक, अब आप लोगों ने जब छेड़ दिया है मुझे यार, देखो भाई देखो अल्लाह ताला ने आपका ये पूरा साल सेहत के साथ गुजारा, रिमेंबर हम पेंडेमिक के दिनों में जिंदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको और आपके घर वालों को महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर का आपकी सर पे छत थी, ओके, आपने रोजाना पेट भर के 3 वक्त का खाना खाया, और अगर 2 वक्त का खाना खाया तो अपनी डिस्क्रिशन पे खाया कि मैं जी डाइटिंग पर हूं, आपने साल में एक छुट्टी भी ले ली, और आपने एक छुट्टी लेने के बाद जो है वो साल में अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा, एंड यू शेयर्ड सर्टेन लाफ्टर्स, यू एंजॉयड 152 फॉर नो विकेट, अ विन अगेंस्ट इंडिया, अ विन फॉर जनरेशंस टू रिमेंबर. और इसके अलावा आई थिंक एज आई सेड, कभी टाइम मिला कभी मौका मिला तो घर वालों के साथ जो है वो बाहर खाना खाने भी चले गए, और कॉलीग्स के साथ अपने जो है वो कुछ अच्छा टाइम इन्जॉय किया. तो और क्या चाहिए ज़िंदगी से यार, इतनी सिंपल सी हैं खुशियाँ ज़िंदगी की. तो उसको अपने साल का डिटर्मिनेंट बनाना कि मेरा नया साल ऐसा या पिछला साल कैसा था, बस इन चीज़ों पे चेक लगाते रहिए कि क्या मैंने ये चीज़ें की हैं. अगर आपने ये चीज़ें की हैं और ये सारी चीज़ें की हैं तो यकीन जाने आपका पिछला साल बहुत अच्छा गुजरा है. ठीक है, और मैं यही दुआ करूँगा कि आपका आने वाला साल जो है ना वो बहुत अच्छा रहे, और इसी तरह की जो छोटी छोटी खुशियाँ. जिंदगी और है क्या यार, आप मुझे बता दें यार. अब हर कोई इलॉन मस्क या हर कोई जेफ बेजोस या हर कोई मलिक रियाज, नहीं वो तो खैर रहने ही दें ना बने, वो थोड़ी बन सकता यार इस तरह के लोग यार. तो मेरा यही ख्याल है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी की, और ये अगर ये इन चीज़ों पर चेक लग रहा है तो फिर यू हैड अ ब्रिलियंट ईयर, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड. ओके, अभी ले चलते हैं आपको एक गाने की जाने, मैंने बहुत बोल लिया अभी, ठीक है, बहुत ज्ञान बांट लिया है. तो अभी हम एंजॉय करते हैं इस गाने को और मिलते हैं आपसे इसके बाद. एंड या देयर यू गो, ले जी आज का पहला गाना आपने सुन लिया अहमद शहजाद साहब की आवाज में. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. एंड व्हाई नॉट, डॉक्टर नौशीन ने बहुत तवील एक गुड न्यू ईयर की जो है वो विश भेजी है, और कोई समंदर के किनारे कहीं मौजूद हैं, और उन्होंने माशाल्लाह कुछ अलग सुबह की कोई वीडियो है जो कि आपने शेयर की है. सो भाई जबरदस्त, एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू, हैव अ ग्रेट ईयर फुल ऑफ वंडरफुल सरप्राइजेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्टे ब्लेस्ड. डॉक्टर साहिबा खुश रहिए. इसके अलावा मोहम्मद वकार साहब भाई बंस रोड गए, तस्वीर भेजिए, थैंक यू. पीर जही साहब कहते हैं वाह यार व्हाट अ डेफिनेशन अबाउट लास्ट ईयर सर, थैंक यू सो मच, जबरदस्त. एंड आपको पसंद आई, मुझे इस बात की खुशी हुई. एंड इसके अलावा खावर नसीम अंसारी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर. सेहत कार्ड एक जबरदस्त प्रोग्राम है जो पाकिस्तान वालों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, अल्लाह कामयाब करे. अच्छा जी, चलें जी, जबरदस्त, अल्लाह ताला कामयाब करे सबको. और आसिफ जलील साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम माय जॉब विद कुवैत कॉन्सुलेट ऑन 31st December. वाओ सर, हैव अ वंडरफुल रिटायरमेंट. अब मुझे नहीं पता आसिफ साहब के आगे आपका क्या प्लान है. मुझे खुशी इस बात की है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी, ऑलबीट एक दिन बाद ही, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद भी जो है मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं. सो मैं ये चाहूँगा कि ये सिलसिला चलता रहे, और महज इसलिए मुनक़ता ना हो जाए कि अब मैं ऑफिस नहीं जाता. सो वो जो है, अच्छा मुझे ना पता है, ऑनेस्टली मैं बड़ी दिल की बात आपको करता हूँ, मुझे बड़ा अक्सर अफसोस होता है, लोग कहते हैं अबे यार तेरा प्रोग्राम मैं बहुत रेगुलर सुनता रहा यार, फिर मेरी टाइमिंग चेंज हो गई. तो मुझे फिर ये एहसास होता है कि यार इतने सोशल मीडिया के ज़माने में भी और एवरी थिंग, वैन यू हैव गॉट द टाइम एंड वैन यू कैन लिसन टू द शो लेटर ऑन एंड ऑल, और बंदा अगर जो है ना वो अपने रूटीन चेंज होने के बाद मेरा प्रोग्राम नहीं सुन पा रहा, इसका मतलब ये कि मैंने उसके साथ जो है ना, मेरे प्रोग्राम ने उसके साथ वो बॉन्डिंग या वो लिंक ही क्रिएट नहीं किया. आई नो मैं थोड़ी सी सुपरफिशियल सी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये फीलिंग आती है. बट जो लोग कहते हैं यार देख मैं मुल्क छोड़ के आ गया लेकिन तेरा प्रोग्राम नहीं छोड़ा, मैं यार बस तू ही है यार, बस यही लिसनर है मेरे प्रोग्राम का, बस जबरदस्त, ग्रेट. ओके जी, तो आसिफ जलील साहब, सर विशिंग यू अ वंडरफुल रिटायरमेंट एंड व्हाट अ टाइम सर. सर अब जिंदगी जी लें अपनी, अभी तो अब आप ना इन तमाम जंजीरें से आप आजाद हो चुके हैं सर. लिव योर लाइफ सर, फाइनली सेकेंड इनिंग ऑलराइट ब्रिलियंट, एंड यूनुस खान वाली सेकेंड इनिंग जी है सर. ओके, यूनुस भाई का था ना बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था सेकंड इनिंग में, याद है ना, फोर्थ इनिंग में खास तौर से. ओके, नुमान यूसुफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बकौल वासिफ अली वासिफ, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है. बड़ी प्यारी बात वैसे यार, ये मुझे लगती है यार, जो अपने नसीब पर खुश है वो खुश नसीब है. जबरदस्त ऑसम सॉन्ग, सलमान गाजी साहब कहते हैं दैट इज ग्रेट. तनवीर फातिमा कहते हैं गुड मॉर्निंग जनाब, वेलकम टू द शो, न्यू ईयर मुबारक, शायरी बहुत खूबसूरत. भाई ये हसनैन साहब ने एंडोर्समेंट भेज दिया, उन्होंने कहा भाई जबरदस्त पढ़ा आपने वो शेर जो मैंने आपको भेजा था, मेरे ख्याल से पूरा मुझे तो मुसलस लगी थी, आई थिंक 3 इसमें 6 मिसरे थे मेरे ख्याल से, मैं गलती पढ़ना हूँ. ओके जी, अहमद शहजाद, अच्छा मैंने अहमद शहजाद बोल दिया, मुबारक हो साल का पहला भंडा मार दिया मैंने अहमद शहजाद बोल दिया, अहमद जानसेब को. ये है मसला, मैं क्या करूं यार, मैं बड़ा सोच के आ जाएंगे. अभी तक मैंने कोई गलती नहीं की थी पहले आधे घंटे में, लेकिन कर दिया मैंने गलती, अहमद शहजाद बोल दिया. ओके, अ प्लेजेंट स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर रेन इन दुबई. अदील अजहर, सनराइज अजीब, सम टिपिकल रेडियो बैकग्राउंड नॉइज ऑन ट्यून इन. यार यार ट्यून इन को छोड़ दें, सीरियसली स्पीकिंग, इसको अब आप इससे अलहदगी इख्तियार कर लें. फाइल फॉर सेपरेशन और डिवोर्स, वट एवर दैट यू वॉन्ट टू, प्लीज मूव टू रेडियो गार्डन. ओके, रेडियो गार्डन आ जाइए प्लीज. और आपके पास कोई रीजन नहीं है ये वाली ना, तो प्लीज जीशान, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, जीशान एन आर पी, मेरा नाम भी उन्होंने लिखा है जीशान एन आर पी. किसी को अगर डाउट होगा जीशान पाकिस्तान में नहीं रहते, तो उन्होंने ट्विटर हैंडल भी बनाया जीशान एन आर पी. सो जीशान एन आर पी. दुबई में कल बारिश हुई है, मैंने सुना है काफी अरसे बाद दुबई में बारिश हुई है, एंड अच्छी बारिश हुई है, तो चले दैट्स गुड. बाय द वे कराची, आई मीन एज आई सेड अर्लियर, ब्रेस योरसेल्फ फॉर सम रेन टुमारो नाइट, और उसके बाद ओवर द वीकेंड लेट्स सी ये प्रेडिक्शन या फोरकास्ट कितनी सही साबित होती है. मरियम शेख, वालेकुम अस्सलाम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू. आतिफ जब्बार साहब जो है, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द लिसनर्स, कहते हैं भाई बहुत शुक्रिया. एंड डॉक्टर अर्सला, डॉक्टर अर्सला अकरम हैप्पी न्यू ईयर कहती हैं भाई, आपको भी साल नौ मुबारक हो. ऑलराइट, अभी क्या सीन है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर, अब क्या ख्याल है, नजर डालें जी. देखिए जी, इस साल का जो पहला हमें जो सियासी झुंझुना है वो मिल चुका है, जिसको मैंने आपको पिछले हफ्ते ही वैसे बता दिया था. और ये जो सियासी झुंझुना है वो है मियां साहब की वापसी. ओके जी, अब मियां साहब की, देखें एक बात तो कंफर्म है, हमारी हुकूमत इनको ला तो नहीं सकती यूके से, नहीं ला सकती, वो तो कंफर्म बात है, वो जो भी बातें कर लें. लेकिन शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने इस वक्त उन्होंने टारगेट किया, और मुझे लग यही रहा है कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है ना इस वक्त, वो ये लग रही है कि यार नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन से पहले आते हुए नजर नहीं आते, तमाम अपनी जो तोपों का रुख है ना वो इस वक्त कर दो मियां साहब की, छोटे मियां साहब की तरफ, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब उनको हेयर अपेरेंट लग रहे हैं इस वक्त. मरियम का तो चांस नहीं लग रहा अभी कि वो अगली इलेक्शन में लीड करने वाली हैं पार्टी को, बिकॉज आपको पता है कि चचा भतीजे आमतौर से एक जलसे में भी साथ नहीं होते. तो फिर आई थिंक गवर्नमेंट ने अपनी शायद थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर ली हैं. तो कल फवाद चौधरी साहब भी आई थिंक थोड़ा फ्री होंगे, उन्होंने कहा चलो यार ठीक है, अभी पहला वीकेंड है, पब्लिक भी ठंड है, इमरान खान साहब भी मुफक्किराना गुफ्तगू सुबह सुबह कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ की अदम वापसी, शहबाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत जाएंगे. ओके, वजीर आजम के अटॉर्नी जनरल को मामला हाई कोर्ट में उठाने, नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम इकदाम की हिदायत की है. ओके जी, फाइनेंस तरमीमी बिल 20 जनवरी तक मंजूर करा लेंगे, इत्तेहादी साथ खड़े हैं, खुद मुख्तार स्टेट बैंक मुल्क की मफाद में है, 30 साल की खराबियां 3 साल में दूर नहीं हो सकती, सिंध भी सिंध कार्ड दे, सेहत कार्ड दे, सिंध कार्ड तो खेला जाता है यहाँ पे, सिंध भी सेहत कार्ड दे. पता नहीं पीपल्स पार्टी आवाम से किस चीज का बदला ले रही है, मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ वापस आ रहा है, नया साल खुशहाली का होगा. ठीक हो गया जी, टॉकिंग अबाउट माशी इस्तेहकाम, इम्पोर्ट्स के ट्रेड का नंबर आ गया है जी, वो आपको पता है कि साल खत्म होता ही आ जाता है. सो ट्रेड के नंबर के ऊपर और इन्फ्लेशन के नंबर के ऊपर आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. ठीक है जी, याद दिला दीजिएगा, मुझे भूल ना जाऊं कहीं मैं. ओके जी, दूसरा क्या, एक्सप्रेस की तो सुर्खी ये थी, डॉन की सुर्खी क्या है, कहते हैं नहीं डॉन की लीड होती है. ओके, सुर्खी तो एक्सप्रेस और जंग की होती है, अटॉर्नी जनरल टू मूव लाहौर हाईकोर्ट ओवर शहबाज फेक एफिडेविट. ये इन्वर्टेड कॉमास में जो है ना फेक एफिडेविट लिखा है, बिकॉज यहाँ पे चौधरी साहब के अल्फाज जो है इस्तेमाल हुए. अच्छा जी, मिनिस्टर सेज गवर्नमेंट लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू सी कोर्ट्स हेल्प टू एंश्योर नवाज़ेस रिटर्न. ऑलराइट, इसके अलावा पीडीएम पार्टी इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर महंगाई मार्च. फजलुर रहमान 23 मार्च को जिस दिन इस्लामाबाद में फौजी परेड होती है, उस दिन उन्होंने कहा है कि जी हम जो है ना वो महंगाई मार्च जो है ना वो करने वाले हैं. और ठीक हो गया, ठीक हो गया जी. इनको शहबाज, इनको ना शेख साहब ने कहा था, शेख रशीद साहब ने कहा 23 मार्च को ना करें, उस दिन एक हमारा फ्लैगशिप इवेंट होता है पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का. उन्होंने मियाँ अपना मौलाना साहब कहते हैं नहीं जी मैं तो 23 को ही आऊँगा. उन्होंने कहा जी आ जाए. ठीक है जी, कोरोना, बड़े शहरों में ओमिक्रोन का फैलाव, पांचवी लहर आ गई, NCOC ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है. विफाक ने 250 अरब रुपये वैक्सीन पर खर्च किए, सिंध को वैक्सीन खरीदने से कौन सा कानून रोकता है, असद उमर का ये कहना है. अच्छा ये ना एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई, यानी खुदा की कसम पाकिस्तान में यार अब तक हमें लग रहा था सेहत के मामले पे ये बातें ना करें, बिकॉज आपको पता है कि वफाकी गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब तक पाकिस्तान में एक एक जो वाइल आया है वैक्सीन का वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया, या तो ग्रांट की फॉर्म में या फिर हमने 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वी हैव स्पेंड अ वेरी बिग अमाउंट इन बाइंग. तकरीबन 1.5 अरब डॉलर हमने जो है वो खर्च किया, 1.5-2 अरब डॉलर खर्च किए इसको खरीदने के लिए. लेकिन अगर आपको याद हो तो सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने बजट में ये बात बोली थी कि उन्होंने खर्चा किया है इन वैक्सीन को खरीदने के लिए. तो सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी वैक्सीन खरीदी है ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यही सवाल पूछा जा रहा है कि यार ये क्या सीन हुई है. तो उस पर कल सईद गनी साहब से जो है ये सवाल पूछा गया. भाई यार अभी वीकेंड पे सईद गनी साहब के हलके में जाना हुआ है यार, कसम से. चल यार नॉर्थ ताजाबाद वगैरह हम चले जाए ना, तो वो तो चले PTI MQM वगैरह के इलाके हैं. यार सईद गनी साहब अपने इलाके में जो उन्होंने हाल किया है ना, खुदा की कसम जरा देख कर आ जाए यार. महमूदाबाद वगैरह एंड ऑल, माई गॉड. एनी वे चले जी आगे बढ़ते हैं. सो सईद गनी साहब जो है ना, उनसे जब ये सवाल पूछा, उन्होंने तोपों का रुख जो है ना कर दिया कि यार ये चूहे हैं और ये चूहे खा गए. जिस तरह सिंध की गंदुम वफाकी गवर्नमेंट कहती है चूहे खा गए, तो वो चूहे जो हैं वो कोरोना की इमदाद खा गए हैं और ये खा गए हैं और कोरोना फंड खा गए हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं. लेकिन ये अच्छा सवाल है जो कि पूछना पड़ेगा कि यार अगर सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी वैक्सीन परचेस नहीं की हैं, तो ये फंड्स कौन से एलोकेट किए जा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं जी. फजलुर रहमान साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी और ANP को मुखालिफ नहीं समझा इलेक्शन में, दांदली के जिम्मेदार अब न्यूट्रल नजर आए. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. अख्तर मेंगल का बयान आया है, रेकॉर्ड एक पर तहफुजात दूर करें तो बैठ कर बात हो सकती है. अच्छा चलें ठीक है जी. इसके अलावा फजाइया ने JF-17 थंडर तैयारे का Block 3 वर्जन तैयार कर लिया. पाक फजाइया Block 3 तैयारे का पहला स्क्वाड्रन फजाई बेड़े का हिस्सा बनाएगी. तैयारा जासूसी निगरानी हमले के मुतालिक हंगामी इंतबाह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निज़ाम रखता है. ये भाई JF-17 जो थंडर हमारा जहाज था, इसका Block 3 यानी उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो पाक फजाइया में शामिल होने को है. और ये डेफिनेटली इट्स अ स्टेप अप एंड अ बिग बूस्ट. एक तो ये कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन का है ये सिलसिला, लेकिन हमें ये अंदाज़ा है कि JF-17 प्रोग्राम जो है ये काफ़ी कामयाबी के साथ और सक्सेस के साथ जो है ये आगे बढ़ रहा है. और हमें ये भी अंदाज़ा है कि एक छोटी मोटी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जिन्हें आप कहते हैं, उसमें हम एक एक्सपोर्ट मार्केट में भी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं. कोई बहुत बड़ी मार्केट तो ज़ाहिर नहीं है बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी सर्टन लिमिटेड ही है, लेकिन फिर भी इस पर काम चल रहा है और ये सही जा रहा है ये प्रोग्राम. आपको ऐसा लगता है. शौकत तरीन साहब का बयान आया है, कहते हैं जिनसी जराइम नहीं, शौकत तरीन साहब जिनसी जराइम की बात करते हैं, वज़ीर आज़म साहब की बातें करते हैं जिनसी जराइम की. शौकत तरीन साहब कहते हैं अशिया की कीमतों में जल्द ही कमी की जाएगी, कौमी करेंसी की कदर में कमी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, हुकूमत बहुत जल्द कौमी असेंबली से फाइनेंस बिल मंजूर कराएगी. जंग का लिखना है नवाज शरीफ वापसी बहस जारी. अच्छा चलिए इस पर हम बात कर चुके हैं. वजीर खजाना कहते हैं अमरीकी दबाव की वजह से इस बार IMF का रवैया सख्त है, कई शराइत मजबूरन मानी, पेट्रोलियम लेवी IMF के कहने पर लगाई, जियो पोलिटिकल सूरत हाल का भी आपको इल्म है कि अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ है. मैं स्टेट बैंक और बैंकों को सिर्फ एडवाइस दे सकता हूं, जैसे जैसे वसूली बढ़ती जाएगी शराय टैक्स में कमी करेंगे, क्योंकि VAT या GST 17% हमारी जैसी मईशत के लिए बहुत ज्यादा है. अच्छी खुल के बात की है शौकत तरीन साहब ने. जरा जो चैलेंजेस हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के तेवर अब पाकिस्तान के साथ बदल चुके हैं, वो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को जिम्मेदार समझता है अमरीकी शिकस्त का. और डेमोक्रेट्स वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान के लिए थोड़ा ठंडा ही ओपिनियन रखते हैं, और IMF ने वाकई बहुत सख्त शराइत पाकिस्तान की हुकूमत के सामने रखी हैं. और अब देखते हैं जी क्या होता है. बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट है IMF के साथ ये मामलात और ये चीज़ें आगे इकॉनमी की डायरेक्शन सेट करने के लिए, स्पेशली हमारे मार्केट्स, रुपी, ये सारी चीज़ों के हवाले से. साल के आखिरी ट्रेडिंग डे में आपको पता है कि रुपी ने जो है वो एक रिवर्स गियर लगाया, लेकिन कहते हैं कोई स्टेट बैंक इंटरवेंशन आई है उस दिन. अगर ऐसा हुआ है तो फिर आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है. मार्केट्स अभी भी रास्ते के तलाश में, मौका मिलेगा कुछ ऐसी अपने कुछ सोच आपके साथ शेयर कर लेंगे क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या है. तो अभी आपको हम लिए चलते हैं भैया ब्रेक की जानेब, और मिलेंगे आपसे टाइम चेक और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. ओके, और छोटा सा ब्रेक है तो थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे, खेलों के हवाले से बात करेंगे लेकिन गाना सुनेंगे उससे पहले, बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. सो कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग टू द सनराइज विद अदि. बस ठीक है चलें जी. ओके थैंक यू सो मच, दैट वाज जुनून मुगैने एंड होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. चलें जी ग्रेट. ओके खेलों के वाले जरा बात कर लें यार. सबसे पहले तो आपको हम बांग्लादेश न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की जो है ना वो अपडेट देते रहें, और इस मैच का जो है वो तीसरा दिन इस वक्त चल रहा है, और इस वक्त Bangladesh are just shy of the lead zone. They are trailing by 11 runs only and they are doing well. I mean, really happy for Bangladesh's performance. इसलिए भी खुश हूँ कि अभी हम उनको जरा उनके होम ग्राउंड पे हरा कर आए ना, तो जरा अभी उन पे जरा भरम कायम है हमारा. सो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए जो है इस पहले टेस्ट मैच में, जो कि एक्चुअली स्टार्टेड ऑन अ न्यू ईयर डे, सो प्रीटी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. सो बहरहाल 328 रन उन्होंने बनाए और न्यूजीलैंड की जानिब से जो है टॉप स्कोरर रहे उनकी जानिब से डेवॉन कॉनवे. और डेवॉन कॉनवे इज एक्चुअली वन ऑफ माई वेरी फेवरेट प्लेयर्स दीज डेज. आई मीन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पिछले थोड़े अरसे में नए प्लेयर्स आए हैं, कॉनवे आपको पता है कि T20 में तो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं, बट इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया ऑन द टेस्ट मैच एज वेल. पहली सेंचुरी इन्होंने अपनी स्कोर कर ली है अपने होम ग्राउंड पे और हेनरी निकल्स जो है वो उन्होंने 75 रन बनाए. रॉस टेलर जो आप जानते हैं कि अपनी अब आखिरी सीरीज खेल रहे हैं, आपको पता है कि उन्होंने ओवर द वीकेंड एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. सो रॉस टेलर ने 31 रन बनाए और उसके अलावा 52 रन बनाए विल यंग ने. रिमेंबर गाइज, इस मैच में की जो कप्तानी कर रहे हैं वो टॉम लेथम कर रहे हैं, केन विलियमसन इज नॉट प्लेइंग. सो तीन विकेटें हासिल की शरीफुल इस्लाम ने और मेहदी हसन मिराज ने जो है वो तीन खिलाड़ियों को आउट किया. अब से थोड़ी देर पहले तक बांग्लादेश ने 317 रन बना लिए थे, उनके चार खिलाड़ी आउट हुए हैं, दैट मींस दे आर ट्रेलिंग बाय जस्ट 11 रन एंड दे हैव गॉट 6 विकेट इन हैंड. सो 55 रन पे बैटिंग कर रहे हैं लिट्टन दोश और इसके अलावा मोमिन उल हक कप्तान जो है वो 67 रन पे बैटिंग कर रहे हैं. सो दैट्स ब्रिलियंट. ओके सो लेट्स सी, ये काफी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा इनकी जानिब से बांग्लादेश की. गुड लक टू देम, गुड लक टू देम. अक्सर ऐसा होता है कि यू कैपिचुलेट बाय द एंड ऑफ द और होता है ये कि आप एंड में आके नजर थोड़ा सा फंस जाते हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी, हसनैन के हवाले से बात करते हैं. भाई वेल डन टू हसनैन. और आपको पता है कि सिडनी सिक्सर्स ने इस बार माशाल्लाह काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जलवा अफरोज हुए हैं बिग बैश लीग में. हारिस रऊफ तो काफी अब रेगुलर फीचर बन चुके हैं मेलबर्न स्टार्स का, लेकिन हमें ये भी पता है कि फरीदून साहब भी लाहौर कलंदर के जो हैं उनके इमर्जिंग जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है उसके खिलाड़ी, वो भी इस बार उनको साइन अप कर लिया था. बट देन फिर पाकिस्तानी और सुपरस्टार्स जो हैं वहां पर पहुंचे, जिसमें वी नो अबाउट रिजवान, ही विल बी अपीयरिंग देयर. इसके अलावा हसनैन ने तो अपना कल डेब्यू कर दिया है. और देन वी नो अबाउट शादाब, जिन्होंने जो है वो आई थिंक हाँ वो भी अपना एक मैच हाँ खेल चुके हैं ना अपना एक मैच, ठीक है. और इसके अलावा फखर जमान, यस फखर जमान इज ऑल्सो देयर इन ऑस्ट्रेलिया. सो बिग बैश में अच्छी बात है जी, आपको पता है कि ये एक और वर्ल्ड कप का साल है. इस साल के आई थिंक 10वें महीने में जो है वो ये मैच होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में. और अच्छा है कि हमारी ये प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान की टीम का कंफर्म पार्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंजरीज से इन सबको जो है और स्कैंडल से महफूज रखे, ये सारे के सारे खिलाड़ी इंशाल्लाह हमारी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होंगे. सो इट्स एक्सेलेंट दैट दे आर गेटिंग, जीतना हारना अपनी जगह, लेकिन इनको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का एक्सपोजर मिल रहा होगा. लेकिन हसनैन ने तो कल कमाल कर दिया माशाल्लाह, अपने बिग बैश के पहले ही ओवर में उन्होंने तीन विकेटें हासिल की. ही वॉज ऑन अ हैट्रिक एट वन पॉइंट इन टाइम, लेकिन एक डॉट बॉल हुई और फिर उसके बाद चौथी गेंद पे पांचवी गेंद पे जो है वो हसनैन ने एक बार फिर से विकेट हासिल की. इनका मुकाबला था, हसनैन रिमेंबर इज प्लेइंग फॉर सिडनी थंडर्स और इनका मुकाबला एडलिट स्ट्राइकर्स के साथ था. और हसनैन की इस परफॉर्मेंस की बदौलत 28 रन से जो है वो फतह हासिल हुई है. वैसे ये एडलिट स्ट्राइकर्स जो है ना ये ऐसी थकी हुई टीम है बिल्कुल. ये हमारी बहन रहती हैं वहाँ एडलिट में ना, वो इनके मैच वैच देखने जाती हैं, तो वो कहती हैं फजूल टीम बिल्कुल हार जाती है हर मैच. और वो खेलता है ना इससे आपको पता, राशिद खान, he plays for that team. So बहरहाल जी, but the good thing is कल Melbourne Stars को शिकस्त हुई है ये. हाँ कल Melbourne Stars को शिकस्त हुई है और देखते हैं ना हमारे लॉन्डों ने क्या किया है काम. देखते हैं, हारिस रऊफ 4 ओवर में 40 रन, दो विकेट भी लिए इसने, लेकिन ठीक है सब पिटे हैं भाई. ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर में 38 दिए हैं, ये ब्रॉडी काउच जो भी है उसने 4 ओवर में 36 रन दिए हैं, ठीक है. सिर्फ कैस अहमद है, इसने 4 ओवर में 26 रन दिए हैं, ठीक हो गया. तो बट ठीक है यार, आरिस रऊफ की बैटिंग फिर से ये बैटिंग भी नहीं आई खास, तो पिट गया भाई ये तो. बट लेट्स सी क्या होता है. एंड देन व्हाट एल्स, ये पर्थ स्कॉर्चर्स ने इनको शिकस्त दी है. सिडनी थंडर के मैच की तो हम बात कर चुके हैं. और ठीक है, मेलबर्न स्टार्स जो हैं वो आज फिर एक्शन, मेलबर्न स्टार्स आज फिर एक्शन में. सो ये हमारे नौजवान जो हैं ये आपको एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे, जनाब हजरत हारिस रऊफ साहब, जी हाँ. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. नुकसान का खौफ कोरोना वायरस के खतरे पर गालिब. अच्छा यार, आज आज भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सुनने में ये आ रहा है दैट सकलैन मुश्ताक साहब का जो कोचिंग का टाइम था, जिसको आप कह सकते हैं कि काफी कामयाब उनका बहसियत कोच पाकिस्तान का टाइम रहा, वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और लग ये रहा है कि आज किसी फॉरन किसी गोरे को जो है वो पाकिस्तान का कोच नामजद किया जा सकता है. देखिए ये बात याद रहे दैट सकलैन मुश्ताक जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही वाबस्ता रहें और हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उससे ही वाबस्ता रहें और वहीं से उनको जो है ना वो ये रोल दिया गया था कि जी वो पाकिस्तान जब मिसबा और वकार यूनुस को खैर बात कहा गया था या वो कहकर चले गए थे, व्हाटएवर दैट वाज, व्हाटएवर हैपेंड वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जब वो चले गए तो फिर सकलैन को लाके वहां पे प्लेस किया गया था. एंड मानना पड़ेगा सकलैन का ये टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा टाइम रहा, बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान ने समेटी, स्पेशली जो हमारा रन था इन द T20 वर्ल्ड कप दैट वॉज अमेजिंग और काफी जिस तरह उनकी बॉन्डिंग डेवलप हुई थी प्लेयर्स के साथ एंड देन जो उनको असिस्टेंट कोचेस मिले थे, जो स्पेशलाइज कोचेस मिले थे फॉर बैटिंग एंड फॉर बॉलिंग और फिर उसके बाद बाबर आजम जिस तरह मच्योर हो रहे हैं बहसियत कप्तान, इट वॉज अ नाइस पर्पल पैच पाकिस्तान क्रिकेट का, वरना आमतौर से हम ऐसे देखते नहीं है. बट अब सुनने में आ रहा है दैट सकलैन का रोल चेंज हो जाएगा और कहते ये हैं कि जी उनको मेंटोर बनाया जा सकता है, लेकिन रमीज राजा जो हैं वो किसी और को कोच लाने के जो है वो प्लान कर रहे हैं. और रमीज की जो थिंकिंग है वो ये है कि आपको कोई बहुत हाई प्रोफाइल कोच नहीं चाहिए, आपको एक फाइन ट्यूनिंग के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज रखने वाले बंदे चाहिए. रमीज की आई थिंक अप्रोच टूवर्ड्स कोचिंग इज डिफरेंट. सो लेट्स सी आज क्या अनाउंसमेंट करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके हवाले से और देखते हैं कि जी किसके नाम का कुरा. ख्याल यही है कि आज पाकिस्तान टीम के नए कोचिंग पैनल का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा. जाहिर है जी आपको पता है ये बात कि अभी टाइम है, इमीजिएटली हम कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे बिकॉज इमीजिएटली जो है वो अब से 24 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले शुरू होने वाले हैं, तो हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब हो जाएगा. सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. ओके जी, और कोई खबर लियोनेल मेसी समेत पीएसजी के 4 प्लेयर्स कोरोना का शिकार. यार ये तो कोरोना ने इस वक्त ना वाकई तबाही फैलाई हुई है और बस अल्लाह ताला सबको सेहत पे रखे. अच्छा जी, जल्दी से जाते जाते प्रीमियर लीग का जिक्र करते चलें. यार जबरदस्त मैच हुआ कल चेल्सी और लिवरपूल के दरमियान और जिस तरह मैच का आगाज हुआ था ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल स्टैमफर्ड ब्रिज में 5-0 से मैच जीत कर जाएगा, लेकिन फिर हुआ ये कि नहीं जी, बड़ा जबरदस्त पहले ही हाफ में चेल्सी ने कमबैक मारा. पहले तो यार कोविचिच ने क्या गोल मारा यार, कमाल हो गया. एंड देन पुलिसिच, ये नाम ऐसे चेल्सी में ही मिलते हैं वैसे. 2-2 से ये मैच पहले हाफ में बराबर हुआ एंड दैट इज हाउ द मैच एंडेड. लेकिन मानना पड़ेगा जी दो अच्छी टीमों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिला और ये मुकाबला 2-2 गोल से जो है बराबर रहा. इसके अलावा इस वीकेंड पे काफी कॉन्ट्रोवर्शियल मैच हुआ आर्सनल और मैन सिटी के दरमियान और जाहिर एक मौके पर आर्सनल जो है ये मैच जीत रहा था, बल्कि काफी अच्छा और बहुत चढ़ाई करके खेल रहा था मैनचेस्टर सिटी के ऊपर, लेकिन फिर वही लकीर के फकीर और जो दो टके की अंपायरिंग जो रेफरिंग होती है इंग्लिश प्रीमियर लीग की वो आड़े आ गई. पहले तो एक आर्सनल को पेनल्टी नहीं दी गई उसी फाउल पे ही ऑलमोस्ट जो है वो पता नहीं फाउल भी था या नहीं था, लेकिन उस पे मैन सिटी को पेनल्टी मिली और फिर आर्सनल के एक प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया गया गैब्रियल को एंड देन इट वेंट प्रीटी बैड. ऑलराइट, सो अब आर्सनल बहरहाल जी दे वर रॉब्ड ऑफ द पॉइंट और इंजरी टाइम में जो है वो विनर स्कोर किया, तो अब मैन सिटी को नहीं हरा पाता आर्सनल. एफ ए कप में रिसेंटली हरा दिया था एक बार, लेकिन नहीं, वो एक आपके लिए अब ना एक मुश्किल टीम बन गई है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है. लेकिन मानना पड़ेगा यार दिस आर्सनल टीम मिकेल आर्टेटा जो लेकर चल रहे हैं प्लान, बिकॉज आर्सनल बाय द वे राइट नाउ इज द यंगेस्ट, एवरेज एज की अगर आप बात करें इट्स द यंगेस्ट टीम इन प्रीमियर लीग राइट नाउ एंड दे आर पुटिंग अप अ रीजनेबल शो. दे आर स्टिल एट नंबर 4 इवन दो टॉटनहम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कैचिंग अप एंड शुड बी एबल टू ओवरटेक देम, लेकिन फिर भी आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग अप एंड आई थिंक माइनर इंप्रूवमेंट एंड एज एन आर्सनल बायस्ड अ वेरी बायस्ड आर्सनल फैन आई एम सीइंग द ग्लास हाफ फुल, सो वेल डन टू देम. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज स्ट्रिंग्स विद मिल गैन. होप यू गाइस लाइक दैट सॉन्ग. 8:23 हो चुके हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम भी चुन किया. दिस इज द फर्स्ट शो ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स, तो उसकी तो बात कुछ और होती है. अच्छा, जरा आगे चल के जरा प्रोग्राम में मईशत के हवाले से जरा बात करेंगे, बिकॉज कुछ नंबर जो हैं वो मईशत के हवाले से बिल्कुल महीने के अख्ताम पे ही आ जाते हैं. सो यानी जैसे मंथ एंड होता है फौरन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आ जाते हैं, तो जरा ट्रेड के हवाले से बात करेंगे आगे चल के, थोड़ा सा इन्फ्लेशन का भी जिक्र कर लेंगे हम. लेकिन अभी हम बात करते हैं यार अजीब, अभी मैंने कल एक वीडियो देखी किसी ने मार्गला हिल्स के ऊपर खड़े होके इस्लामाबाद की एक फुटेज बनाई थी और आई वॉज शॉक टू सी बिकॉज आई रियली थॉट दैट ये जो न्यू ईयर फायरिंग और ये फायर वर्क सी, मैं थोड़ी सी शायद इग्नोरेंट सी बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद जिस लेवल की ये पागलपना कराची में होता है पाकिस्तान का कोई और शहर जो है ना वो इसको मैच नहीं कर पाता. सो लेकिन असला हमें पता है केपी में ज़्यादा है लेकिन केपी वाले इतने न्यू ईयर सेलिब्रेट करते नहीं हैं. लेकिन कराची में पता नहीं किस बात में कहते कराची वाले पता नहीं किस बात की खुशी मना रहे हैं कि भाई नए साल में तेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन अजीब सेलिब्रेशन. अच्छा मैं इत्तेफाक से उस दिन एक एक शॉप की ओपनिंग थी फास्ट फूड की वहाँ में गया था, देर हो गई वहाँ पे हमें. सो वो वापस आते आते रास्ते में न्यू ईयर पड़ गया और जी शुगल मस्ती मेला लगा हुआ है, फायर वर्क्स हो रहे हैं और सारी चीज़ें. और मैं यही सोच रहा हूँ यार और डर लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से कोई आवारा गोली आ जाए और आके लग जाए. सीरियसली अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, इट वॉज बैड ऑफ अस दैट हमने सफ़र किया लेकिन क्या करते हैं यार. आप क्या एक घंटा बैठे रहते बिकॉज आई नहीं समझ में आता मुझे कराची वाले एटलीस्ट इस्लामाबाद वाले माशाल्लाह साफ सुथरी सड़कें हैं वहाँ पे. ऐसे खुदा के लिए मत बोलना है कचरा पड़ा हुआ है नहीं उठा इतना दिनों. भाई छोड़ दो, तुम लोग नाशुक्रे लोग हो इस्लामाबाद वालों, तुम लोग जन्नत में रह रहे हो पाकिस्तान में और मैं पता नहीं इस्लामाबाद वाले इमिग्रेट क्यों करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता. इस्लामाबाद वाला जो इमिग्रेट कर रहा है ना वो तो समझ लें वो बस वो फेल हो गया है करियर में अपने, वरना इस्लामाबाद वालों को ना कोई इमिग्रेशन की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं. तो कहने का मतलब ये कि मैंने वहाँ किसी ने मार्गला से वीडियो बनाई इस्लामाबाद की एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू सी मैन व्हाट इज गोइंग ऑन. इतनी फायरिंग और इतनी जो है वो फायरवर्क्स नजर आ रहे थे. आई मीन किसी एक जगह पे जमा करके पर चलो शुक्र है अच्छा है कि वो डीसी इस्लामाबाद कोई आइडिया नहीं आया, वरना आपको पता ना उनके तो फुस हो गए थे. वो लैंटर्न एक बार उन्होंने उड़ाने का प्लान बनाया था, वो उनके उड़े ही नहीं था लैंटर्न, वो पता नहीं क्या मसला हो गया था सुना है. बट फिर भी यार इसको किसी एक जगह पे जमा करके कहीं कर लेते यार. वैसे इस बार तो सुना है बहरिया टाउन में भी कोई पटाखे वटाखे नहीं फोड़े ज़्यादा, वहाँ पे भी लाखों की तादाद में लोग पहुँचे हुए थे लेकिन वहाँ पे कराची की मैं बात कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ उधर ना. बट हर मुल्क का अपना मिजाज होता है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का. अच्छा मैंने अभी ये नोट किया फ्रांस में अजीब कहानी है. फ्रांस में आपको पता है कि वो न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फ्रांस में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं गाड़ियां जलाकर. मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई गाड़ियों के मॉडल की बात या वो कोई छोटी डिंकियां जो है लेकर कार फोर्स से उसको नहीं जलाते, वो असल गाड़ियां जलाते हैं वहां पे. बस यानी बस गाड़ियां जलानी है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है. ये फ्रांस में एक एनुअल ट्रेडिशन बन गया है ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाला. तो इस साल अच्छा पिछले साल जरा क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था इसलिए गाड़ियां ज्यादा नहीं जली लेकिन नाउ द फायर बर्निंग इंसिडेंट इज बैक. और कहते ये हैं कि पूरे फ्रांस में कुल मिला के 874 गाड़ियां जो हैं वो जलाई गई हैं. यानी कसम से क्या सीन है. कहते ये हैं कि जी इस हाउएवर ये भी याद रहे कि ये जो 874 गाड़ियां जलाई गई हैं ये 2019 के मुकाबले में जो है ना ये बहुत कम नंबर है. ये 2019 के मुकाबले में बहुत, कहते हैं जब तकरीबन कोई 1400-1500 के करीब गाड़ियां जो है ना जलाई गई थी. यानी मजाक लगा हुआ, जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनियों का जो लॉस होता होगा यहाँ पे. बिकॉज आपको पता है तरक्की याफ्ता ममालिक में जनरली लोग को इंश्योरेंस करवानी होती है, हमारे यहाँ नहीं होता. यहाँ पे कि यार मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ लोग 40-40 लाख की गाड़ियाँ बगैर इंश्योरेंस के चलाए जा रहे हैं. वो खैर एक अलग रोना धोना है लेकिन खैर एनीवे तो ये फ्रांस का एक ट्रेडिशन बन गया. और कहते हैं जी इस ट्रेडिशन का जो आगाज़ है वो सन 2005 में हुआ था जब फ्रांस के जो मुख्तलिफ सबर्ब्स हैं वहाँ पे एथनिक राइट्स जो हैं वो फूट पड़े थे. और कहते ये हैं कि जी तकरीबन 95,000 पुलिस वालों को जो है वो एक्स्ट्रा पुलिस वालों को जो है वो ड्यूटी में रखा गया था लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे. अच्छा ये पता है आपको, पता है ना फ्रांस में ज़रा जो वहाँ पे ये खुलखपाड़ा और शोर शराबा करने वाले ज़्यादा लोग कौन हैं और ये ज़्यादा जो तोड़ फोड़ होती है वो मखसूस इलाके हैं. यहाँ पे जो आपके नॉर्थ अफ्रीकन लोग रह रहे होते हैं ज़्यादा वहाँ पे ये पंगे जो है ना उनके यहाँ ज़्यादा हो रहे होते हैं. लेकिन फिर भी यार यानी तरीका भाई अपना है मनाने का न्यू ईयर. आप देख लें फ्रांस में न्यू ईयर मना रहे हैं ज़बरदस्त. ओके अहमद भाम साहब थैंक यू सो मच. कहते हैं जी दुबई में जबरदस्त बारिश हुई है और कहते हैं रेन्स इन दुबई सिंस थर्सडे टू फ्राइडे नाइट हैवीएस्ट डाउनपोर ड्यूरिंग जुमा नमाज. अभी भी क्लाउडी स्काइज. चलें जी क्लाउडी स्काइज हैं, तेज हवा चल रही है लेकिन सर्दी नहीं है. सर्दी जो है वो तो कराची में है, हो रही है. आई मीन कराची के हिसाब से ठीक है, अच्छी मजेदार मौसम है और आज काफी तेज हवा भी थी सुबह जब मैं आज निकला हूँ, और अपने मॉर्निंग रूटीन को मैंने रिज्यूम करने की आज सुबह से कोशिश की है, जो कि डिसकंटिन्यू हुआ हुआ था पिछले तकरीबन कोई 3-4 दिन से. सो आई रियली एंजॉयड माई रन इन द मॉर्निंग टूडे बिकॉज इट वॉज कोल्ड, बट वो जो कोल्ड एग्रीवेट हो रही थी बिकॉज ऑफ द विंड दैट वाज ब्लोइंग. सो या दुबई, हूएवर इज लिसनिंग, एंजॉय द वेदर देयर यार, दैट्स ब्रिलियंट. All right, that was Josh with the Mossam. I hope you guys enjoyed that song. I surely did, and why not? You guys know I like this song, all right? And my mother likes the song as well. क्यों भाई डॉक्टर जीशान है ना. चलें जल्दी से बात करते हैं जरा पाकिस्तान की इकॉनमी के कुछ नंबर्स के हवाले से. भाई नए साल का आगाज हो गया है, और देखिए जी एक बात जो हम शायद पिछले आखिरी प्रोग्राम में भी कह रहे थे, दिस इज द लास्ट फुल ईयर ऑफ दिस टर्म ऑफ इमरान खान्स गवर्नमेंट. अच्छा अब जो जाहिर अगले साल इलेक्शन होंगे मिड ऑफ द ईयर, मे बी इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, और उसमें क्या नतीजा निकल कर आएगा वो तो खैर उस वक्त का हमें पता होगा, लेकिन दिस इज द लास्ट फुल ईयर, और कुछ लिहाज से ये जाहिर है कुछ लिहाज नहीं बल्कि काफी लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है. कल मैं सुन रहा था किसी को, कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे ये बोल रहे थे कि दिस इज द ईयर ऑफ स्टेबिलिटी 2022. पाकिस्तान इस लिहाज से बड़ा बदकिस्मत मुल्क रहा है कि वी हार्डली हैव एनी ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी. कुछ हम अपने क्राइसिस क्रिएट करते हैं या कुछ हमारे क्राइसिस जो है वो खुद ब खुद आ भी जाते हैं. बट या एक लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, और वो ये कि पाकिस्तान की एज फार एज द इकोनॉमिक डायरेक्शन इज कंसर्न, ये कुछ एक एक फैसला कुन साल हो सकता है. बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे बिलीव नहीं करते हम लोग, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि इंडिया की जय जयकार किसी ट्विटर थ्रेड में हो रही थी, आरबीआई ने क्या पॉलिसी क्या ये बनाई. भाई जिसने पॉलिसी बनाई थी रघुराम राजन, उसको फुक करके फारिग कर दिया था मोदी साहब ने. तो ये बातें अपनी जगह होती हैं, बट इंडिया ने वी ऑल नो दैट इन 1990s एंड इन 2000s दे फॉलोड अ वेरी वेरी उन्होंने एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक फ्रेमवर्क फॉलो किया था, और हुकूमतें आती जाती नहीं, लेकिन जो बुनियादी चीजें थी इकोनॉमी की वो उन्होंने नहीं छेड़ा था उसको. पाकिस्तान में मसला ये है कि नेक्स्ट ईयर अगर फर्ज करें एक बार फिर से नून लीग इलेक्शन जीत कर आ जाती है, सो क्या फिर हम मैनेज एक्सचेंज रेट की तरफ जाएंगे. मुझे याद है नाउजुबिल्ला अल्लाह माफ करे मुझे, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं मेरे, मुझे कपकपाहट सी आ जाती है कि हमारे इसहाक डार साहब ने जो है वो एक बार ये बात बोली थी कि मुझे अभी कुछ अर्से पहले की बात, उन्होंने कहा मुझे हुकूमत दे दे मैं फिर डॉलर को 100 पे ले आऊंगा. यानी इस कदम इस किस्म की अजीब व गरीब बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि आप डर जाते हैं कि यार इन लोगों को फिर अगर इख्तदार मिल गया इस मुल्क का क्या हाल करेंगे ये लोग इकोनॉमी का. बिकॉज ये एक बहुत महंगा सौदा पाकिस्तान ने किया था एक फिक्स्ड इकोनॉमी एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैनेज करने का. लेकिन बहरहाल जी सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल. अच्छा जी पहले साल के जो है कहना चाहिए कि इनको पहला नंबर आ गया है, और दैट इज खैर पहला तो नहीं कहूंगा, पिछले कैलेंडर ईयर का आखिरी नंबर जो आया है उससे कुछ एक अंदाजा हुआ है. मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के तिजारती खसारे के हवाले से, और इसमें जहां पे चलें अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले में 17% दिसंबर टू दिसंबर 17% इजाफा हुआ है. वहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें पिछले महीने के ना, देखिए मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव हो रहा हूँ यहाँ पे. आप कहेंगे अदील साहब आप कहते हैं सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर करो. मैं एक्सपोर्ट्स को सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंपोर्ट्स को सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर रहा. उसकी रीजन ये है कि पिछले साल दिसंबर के महीने में जब दिसंबर खत्म हुआ था पिछले साल, ऑयल की जो एवरेज प्राइस थी वो $47-48 टू अ बैरल चल रही थी. इस वक्त ऑयल की प्राइस आपको पता है कि $75-80 के दरमियान चल रही है. इसलिए एक कंपैरिजन पिछले साल से बनता नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी लो प्राइसेस. तो लो बेस इफेक्ट जिसे आप कहते हैं वो यहां पर आ जाता है. अगर आप पिछले महीने से कंपेयर करें तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में $1 अरब की कमी वाकई हुई है. द इंपोर्ट्स आर डाउन बाय $1 बिलियन. सो ये एक पॉजिटिव खबर है गवर्नमेंट के लिए. यानी पिछले महीने जब इंपोर्ट्स का नंबर आया था तो हमने 7.9 तकरीबन $8 अरब की इंपोर्ट्स की थी, जो कि एक बहुत खौफनाक नंबर था. लेकिन इस साल इस महीने जो है वो नंबर ये कम होकर 6.9 या चले मैं कह देता हूँ 7 अरब पे आ गया. तो 8 से 7 अरब पे आ गया, विच इज़ अ डिसेंट नंबर आई वुड से. और इसका जो हमें ज़ाहिर एडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है कि दिसंबर के मुकाबले में आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि दिसंबर में जो कि तकरीबन नवंबर के महीने में सॉरी जो कि $5 बिलियन था वो कम होके $4.1 बिलियन. तो हुकूमत ज़रा यहाँ पे सुख का सांस लेगी रुपी के लिए भी ये जरा अच्छी खबर है कि आपकी जाहिर है आपको अपने खसारे को फंड करना होता है ना, खसारे को पे करने के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो अब उनकी जरा डॉलर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ऑयल की प्राइसेस में जिस तरह तेजी से इजाफा हुआ था, हमने ये देखा कि दिसंबर के महीने में जब ओमिक्रॉन वेरियंट आया था तो ऑयल की प्राइसेस में जरा सा कमी, उसका भी खैर एनीवे उसकी डिलीवरीज अभी तो खैर नहीं हुई होंगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने जो कुछ सख्त इकदाम उठाए थे इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से डिसीजन लिए गए थे, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो अब नजर आना शुरू हुआ है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि जनवरी के महीने में क्या होगा। जनवरी के महीने में ऑयल की प्राइसेस के अगेन तेवर इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे थे, एक बार फिर से ऑयल जो है वो 80 को टच करता हुआ लेकिन थोड़ा सा कमी मंथ एंड पे नजर आई है। अब देखते हैं, अब नई मार्केट्स खुलेंगी, आज खुलेंगी मार्केट्स, तो देखते हैं क्या रहता है इसमें सिलसिला। लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ा जाहिर है जो चैलेंज है इस वक्त, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले कैलेंडर ईयर के आखिरी 6 महीने में एकदम बड़ूम करके बढ़ गया था, उसको अब हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं उसमें कितनी कामयाबी इनको मिलती है। बहुत सारे पॉलिसी डिसीशन इस हवाले से ले लिए गए हैं वन, लेकिन बहुत कुछ डिटरमिन ये करेगा कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कहाँ पर जाती हैं और फिर क्या रहेगा सिलसिला। जाहिर है ये जो आपका खसारा है जिसको आप जारी खसारा कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ये डिटरमिन करेगा द डायरेक्शन फॉर योर इकोनॉमी कि आगे इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या जा रही होगी, रुपी की वैल्यू कहाँ जा रही होगी। बिकॉज अगर ये खसारा बढ़ता जाएगा तो जाहिर है रुपी पे काफी प्रेशर आएगा, और अगर ये खसारा कम होगा तो आप रुपी पे प्रेशर जो है वो कम होता हुआ फील करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो कुछ यही मामला डिटर्मिन कर रहे होंगे। पिछले महीने का नंबर आई वुड से कि जो 4.1 अरब डॉलर का खसारा हुआ है, हुकूमत चाहेगी कि ये फर्दर कम हो के अगर ये 3.5-3.75 पे आ जाता है, सो डेफिनेटली स्टेट बैंक की कोई भी अगर इंटेंशन होगी आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तो उसमें कमी आ सकती है। लेकिन हुकूमत के लिए जो बड़ा चैलेंज अभी भी है वो अफराते जर है, वो इन्फ्लेशन है। पिछले साल के मुकाबले में इन्फ्लेशन कोई 12% पे जो है वो आया है, और दिस इज़ अ बिग नंबर। नेचुरली हुकूमत बड़ी क्लियरली ये बात बोल दी कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं। अवाम ये बात नहीं समझती, अवाम ये बात नहीं समझती, पाकिस्तान की अवाम आप जानते हैं कि ज़रा थोड़ी सी एजुकेशन कम है। अभी मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे पास एक अभी डॉक्टर काजमी ने एक ट्वीट मुझे भेजा है, और ये कोई साहब हैं जिन्होंने एक बड़ी एक कोई सहाफ़ी हैं लाहौर के, और उन्होंने ये बड़ा मज़ेदार सवाल ये बोला है कि ये जो सेहत इंसाफ कार्ड है वो कह रहे हैं जी हुकूमत 400 अरब रुपए जो है वो दे रही है, दैट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द सेहत इंसाफ कार्ड। और वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार यही पैसे जो हैं वो टैक्स बढ़ाने के बजाय अगर हुकूमत जो है वो यहाँ पर लगा लेती तो फिर लोगों पे इतने टैक्स जो है ना वो क्यों लगाए जा रहे हैं। यानी अब मैं कभी कभार ना ये बातें सुन के मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है कि वेयर दिस गवर्नमेंट इज लूजिंग आउट इज एक्चुअली अपनी जो कम्युनिकेशन है अभी तक ये समझा नहीं पा रहा है। ये बड़े खैर anyway, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये कितने आसान टॉपिक्स हैं भी नहीं आवाम को समझाने वाले। मैं भी कभी कभार बड़ा हैरान होता हूँ कि इतनी कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद अक्सर लोग बड़े बेसिक सवाल मुझसे पूछ लेते हैं, बट आई मीन आई ग्लैडली आंसर दैट कि मेरे शायद समझाने में कोई कमी रह जाती है, लेकिन मैं कोई बहुत कोई बड़ा उस्ताद थोड़ी हूँ मैं। लेकिन और मेरी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बड़ी लेमैन किस्म की है बात चीज़ों के हवाले से, बट मैं बड़ा हैरान हुआ ये चीज़ देख के कि यार एक जगह IMF आपको कह रहा है कि यार अपनी गवर्नमेंट के या अपनी इकोनॉमी के तुम्हारे जो कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको फिक्स करो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं वो वेलफेयर प्रोग्राम के पैसे जो है वो यहाँ पर लगा दो। एनीवे इस डिस्कशन को कभी लेते हैं बाद में, अभी फिलहाल आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और सनराइज शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो। फैसल अख्तर कहते हैं वाजंट मेट्रो बस अ वेलफेयर प्रोजेक्ट व्हिच वाज क्रिटिसाइज्ड बाय यू, वाजंट मेट्रो बस अ वेलफेयर प्रोजेक्ट। मेरे लिए तो देखें जी सारी बल्कि सिंपल सी बात है, मैं तो आपको ये कह रहा था कि मेट्रो बस के जो पैसे हैं यार उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एक सर्टन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप उसको वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में लगाएं। आई मीन जस्ट इमेजिन द कॉस्ट ऑफ रनिंग दीज मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। देखें मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता जो ये कहता है कि जी ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स आपको बॉटम लाइन देते हैं, नहीं देते। दुनिया में बहुत कम इस तरह की बल्कि इनफैक्ट अगर आप US चले जाएंगे वहाँ पे दीज आर हाईली सब्सिडाइज प्रोग्राम फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। सीरियसली स्पीकिंग आई स्ट्रांगली फील दैट मेट्रो बस की यूटिलिटी ऑरेंज लाइन की यूटिलिटी एंड कंपेयर इट विद एनी हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम की यूटिलिटी, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. सी वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीटीआई इज स्टिल लूजिंग इवन विद अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लाइक सेहत इंसाफ कार्ड, दे आर लूजिंग इन केपी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो दिखता है वो बिकता है मेरे भाई. And that's the way it is. Anyway, Asad Dumaza, thank you. Imran Amin कहते हैं आज गाने अच्छे चल रहे हैं. Sadi and Faiza, thank you so much. Tawseef Abbas, thank you so much. I'm sorry, आज मैंने One Man Army साहब को गाना पसंद आया. Thank you. And then we have got messages. Sorry, मेरा पेज refresh हो रहा है. My favorite part of the show when you speak about economy. All right, Imad Haq कहते हैं Assalam Alaikum. Surprisingly very short 8:30 break. यार लगा दी आप लोगों ने नजरें यार, seriously. आरिज लईक कहते हैं, इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन अबाउट द मिनिमम वेज. और वो कहते हैं, डू यू थिंक दैट हैविंग अ मिनिमम वेज इज अ गुड एस्पेक्ट फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक आर्स? ऑन वन साइड आई सी डोमेस्टिक एडवांटेज ऑफ बेटर इनकम, बट ऑन ऑल्सो द मैक्रो डिसएडवांटेज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यस इट इज. आई थिंक सी यार, इकोनॉमिक्स को आपको जाहिर है ऐसा सब्जेक्ट समझना पड़ेगा. एक तो ये कि दिस इज नॉट अ पार्टिकल साइंस, तो ऐसा है नहीं ना कि यार इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसका इतना वेट होता है और इतना मास होता है और फलाना होता है. इकोनॉमिक्स में लाइक देर आर ओपिनियंस, एंड ओपिनियन की बेस के ऊपर आपको कोई बंदा अपना ओपिनियन देगा और कोई और बंदा अपना ओपिनियन. हो सकता है मेरी बातें जो हैं वो बिल्कुल लोगों को गलत लगती हूँ. आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट ऑफ कोर्स बाय एजुकेशन और बाय प्रोफेशन, बट देर विल बी प्रॉपर इकोनॉमिस्ट हू माइट से कि नहीं यार दिस इज रिडिकुलस व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है. और दूसरा जो पॉइंट है वो ये, इकोनॉमिक्स इज अबाउट वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप एज वेल. यानी आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है ना, जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि किन चीजों को प्रेफरेंस देनी है, क्या देनी है. सो हैविंग सेड दैट, हैविंग अ मिनिमम वेज जो है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि यार कहाँ पे जाके ये मिनिमम वेज इज गोइंग टू स्टार्ट हर्टिंग यू. मसलन सिंध गवर्नमेंट ने हाल ही में 25,000 रुपए जो है वो मिनिमम वेज कर दी थी. That has hit the businesses really hard. और सिंध गवर्नमेंट का तो बहरहाल मुझे पता नहीं उनकी क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट और क्या प्रॉब्लम इज विद द डिफरेंशियल. या तो एक मिनिमम वेज रेट पूरे पाकिस्तान में एक जैसा हो एंड यू अप्लाई इट यूनिफॉर्मली, लेकिन अगर आप सूबे की बेस पे कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी. उसमें एक किस्म की मुमासलत होनी चाहिए, अदरवाइज सिंध के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे आर एट अ डिसएडवांटेज. और वो अपनी कैलकुलेशन और बोलेंगे भाई छोड़ो मुझे तो काम ही नहीं करना, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपना प्लांट लगा रहा हूँ पंजाब में, ओके फैसलाबाद में लगा रहा हूँ अपना प्लांट में लगा रहा हूँ, बंद करके चले जाएंगे यहाँ से. सिंध गवर्नमेंट को क्या होगा, वो जमीन पे प्लाजा बना सकते हैं, फिर वो जो फैक्ट्री की जगह खाली होगी उनका शौक भी है काफी है. बट बहरहाल जी, अली हैदर गिलानी साहब थैंक यू सो मच. एंड देन वी हैव गॉट फराज पाकिस्तान आए हुए थे विजिट करने, एंड देन ही सेड दैट उन्होंने दो हफ्ते गुजारे आखिरी दिसंबर के, बहुत खूबसूरत वेदर था कराची का, एंड ही विजिटेड मनोड़ा दो दरिया रेस्टोरेंट ब्लॉक एल, जबरदस्त मेरे एरिया आए थे यार आप तो बिल्कुल मेरे ब्लॉक, जबरदस्त. एंड एम्प्रेस मार्केट देखें जी, मैं हमेशा कराची आने वाले जो भी अप कंट्री से आ रहे होते हैं मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ दैट दिस इज दी बेस्ट टाइम टू विजिट कराची. दिसंबर के आखिरी हफ्ते, जनवरी के पहले 15-20 दिन, ये बेस्ट टाइम है. यानी बहुत ज़्यादा कराची में सर्दी पड़ती नहीं है सच, लेकिन स्पेशली जो अप कंट्री के दोस्त आते हैं उनके लिए तो ये बहुत मॉडरेट वेदर होता है. सो दिस इज इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर कराची, समंदर भी जाना आप चाहें अगर तो समंदर भी ज़्यादा चढ़ावा नहीं होता है और बड़ी हल्की हल्की सी लहरें होती हैं बिकॉज नॉर्मली लैंड ब्रीज ब्लो कर रही होती है. सो Yeah, enjoy that. Okay, जी. वलीद मुगल कहते हैं नहीं भाई इस्लामाबाद अब पहले वाला इस्लामाबाद नहीं रहा. देखो यार दुनिया का कोई भी हिस्सा पहले वाला नहीं रहा. ओके जी, तो अगर तुम न्यूयॉर्क भी चले जाओ कहेंगे मैन दिस नो मोर द न्यूयॉर्क ऑफ द 1990s, इट्स चेंज्ड अ लॉट. हर जगह चेंज सबाद एक तगैयर को है जमाने में, ठीक है. तो ये बात बोल दो कि पुराना वाला कोई, हर शहर चेंज होता है, लेकिन अगर तुम सोचो कि इस्लामाबाद पुराने वाला इस्लामाबाद नहीं रहा सो फिर कराची का क्या हाल हुआ होगा, और लाहौर फॉर दैट मैटर. यस आई नो, मैं अपने बचपन का जो लाहौर मुझे याद है यूज टू बी मच ग्रीनर एंड इट हैज चेंज अ लॉट. इन फैक्ट द होल द फील ऑफ द सिटी इज, आई होप द सिटी डजंट लूज दैट बिकॉज दैट वाज द यूएसपी ऑफ लाहौर, वेरी ग्रीन सिटी एंड आई होप दैट स्टेज दैट वे. लेकिन इस्लामाबाद अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से बहुत बेहतर है. ना शुक्री मत करो मेरे भाई. लोन शमीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बीइंग अ मुस्लिम यू कांट सेलिब्रेट न्यू ईयर इन आर टाउन, नो वन सेलिब्रेट. देखो यार बात सुनो, लोन शमीम भाई बांडीपुरा से प्रोग्राम सुनते हैं. एक तो नंबर वन, बांडीपुरा इस्लाम को डिटरमिन नहीं करता कि इस्लाम में क्या चीज़ें हैं, यानी कि बांडीपुरा में सेलिब्रेट. देखो यार बात सुनो, आप तहजीब के साथ कोई भी फेस्टिवल बनाएं यार, उसमें उसमें दीन आपको कहाँ रोक रहा है. हाँ अगर आप हुल गपाड़ा और आप शोर शराबा करेंगे और उसमें जहर गैर अखलाकी हरकतें होंगी तो फिर, अब ये गैर अखलाकी हरकतें हमारे यहाँ बहुत सारे इस्लामी त्यौहार हो रहे होते हैं यार, जिसमें हमारे यहाँ शराब की महफिलें चल रही होती हैं. ईद पे होता है यार, जो पीने वाली फैमिलियाँ होती हैं वहाँ पे मैं आप यार आप हैरान, मैं नाम नहीं ले रहा, एक बहुत मशहूर खानदान है यार, उनके यहाँ यार उनके यहाँ स्वयं में शराब चल रही थी यार, छोड़ देना यार, अब मैं नाम नहीं ले रहा यार उनका, तो यार ये अब तो ये भैया ये कोई फेस्टिवल बाय डेफिनेशन, मेरे भाई शमीम भाई, कोई फेस्टिवल बाय डेफिनेशन गलत नहीं होता, उसमें आप जो हरकतें करते हैं वो उसको गलत बना देता है. सो ये मेरे ख्याल से इस उसूल को जो है ना वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ओके जी भाई, साल का पहला प्रोग्राम विदाउट जे जे सॉन्ग, वैसे वाकई जावेद साहब ने बिल्कुल सही बात की है. और ओके बाकी जे जे का सॉन्ग होना चाहिए था लेकिन मैंने क्यों नहीं चलाया, बहुत गलत बात है, कल चलाएंगे सर, कल चलाते हैं. जहीर साहब दुबई में प्रोग्राम सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई अगेन, ब्यूटीफुल वेदर हेयर, वाकई यार इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, और आप तो साहिल समंदर गए हुए थे यहाँ पे, और that's brilliant sir, brilliant. Okay जी, and then anything else that we have got, मेरे पास तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं, and let's see. डॉक्टर शैला सेज वेलफेयर प्रोग्राम लाइक सेहत कार्ड टू इंश्योरेंस कंपनी, चलें बिल्कुल यार मेरे ख्याल से ना ये जरा इस पे हम बात कर लेंगे जरा तफसील के साथ, ये सेहत कार्ड के साथ, दैट हाउ डज दिस फंक्शन एंड वाओ वाओ डज हाउ डज दैट वर्क, एंड ठीक हो गया जी, बिकॉज ये इस पे सवाल पूछे जाएंगे हुकूमत के साथ, जाहिर एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट है जो ये बोलेगा कि आपने इतने बड़े बड़े टैक्सेस लगा लिए हैं लेकिन आपको चाहिए था कि आप लोगों को हेल्थ फैसिलिटी जो है ना वो ना दें, यानी आप टैक्स. अच्छा ये यार चले, मुझे अक्सर ना ये सवाल सुन के थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है, लेकिन पता है असल में हमारे यहाँ फिर वही बात है, मैं शायद a lot of people have taken me wrong for that, और मुझे जब एक दो लोग मिले भी हैं और वो कहते हैं यार why are you so pro IMF, नहीं I try to tell them that no I'm not pro IMF, लेकिन IMF जो बास बातें आपसे डिमांड करता है वो गलत नहीं करता है यार, वो गलत नहीं करता है. हम मैंने अगेन आई रेफर यू टू माई YouTube, एक जमाने में मैं YouTube व्लॉगिंग किया करता था, और मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बनाई थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मसला क्या है. ये वो टाइम था जब इमरान खान साहब की नई नई गवर्नमेंट आई थी और असद उमर साहब वजीर खजाना हुआ करते थे, जिनके बारे में हमें ये प्रोफेसी दी गई थी कि यार दिस इज द मैन हु इज गोइंग टू सॉल्व ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, दो वी नो ही कुड नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग, और पाकिस्तान जो है वो IMF की दहलीज पे दस्तक दूं या ना दूं उस पर लगा हुआ था. एंड आई टॉक्ट अबाउट दिस फैक्टर कि वॉट इज रॉन्ग विद आर इकोनॉमी, मसले क्या है, पंगे क्या है, क्यों हम जाके बैठ जाते हैं. सो IMF को भी खुशी नहीं होती है कि यार हर थोड़े दिनों बाद तुम आके हम बैठ जाते हो हमारी दहलीज पे के लो पैसे दो मुझे इतने बिलियन डॉलर दो, ये उन्हें IMF को खुशी नहीं है इसकी, वो आपसे कुछ डिमांड्स करता है, वो आपसे कुछ चीज़ें चाहता है आपकी इकोनॉमी में फिक्स करने के लिए. सो इस पे भी डिस्कशन हो सकता है लेकिन अभी नहीं, बिकॉज अभी मुझे वक्त आ गया, आप लोगों से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. गाइज हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, विशिंग यू अ वंडरफुल ईयर अहेड, एंड बहुत सारी दुआएं उसके लिए, और एज आई सेड समथिंग फर्स्ट थिंग दैट आई सेड इन द ईयर, आई होप कि हमारा और आपका ये साथ इसी तरह चलता रहेगा इस साल 2022 में भी इसी मोहब्बतों के साथ. सो इंशाल्लाह कल सुबह होगी फिर आप लोगों से मुलाकात, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.